इंद्रियों कर्मकता पतेर नहीं यत्नोर्थ इष्यते। ये जो कारिका का उत्तरार्ध है उसकी व्याख्या कर रहे हैं कि अयम भाव है, माने उत्तरार्ध का ये भाव है कि व्यापार अवाच्यत्व पक्ष है, कि व्यापार में अगर हम अवाच्यत्व मानेंगे अर्थात धातु का वाच्य व्यापार नहीं होता है ऐसा अगर मानेंगे तो फलमात्रम अर्थ है इति फलितम। तो इसका मतलब ये हुआ कि धातु का फलमात्रम अर्थ है, फलमात्र ही अर्थ होता है। तथा च, और अगर ऐसा होगा तो करोति इत्यादो यत्न प्रतीतेह तन मात्रम वाच्यम अभ्युपेयम। फिर क्या होगा कि करोति इत्यादि में यत्न की प्रतीति होती है, यत्न का बोध होता है, तो तन मात्रम माने यत्न मात्रम वाच्यम, तो फिर ती धातु का जो है यत्न मात्र अर्थ जो है मानना पड़ेगा। अभ्युपेयम माने स्वीकर्तव्यम, क्री धातु का यत्न मात्र अर्थ जो है वह स्वीकार करना होगा, माने फल मात्र अर्थ स्वीकार करना होगा। और ऐसा अगर करते हैं तथा च, ऐसा करते हैं तो यति प्रयत्ने इतिवत, जैसे यति प्रयत्ने धातु है जिसका रूप बनता है यतते यतेते यतन्ते, और यह जो है अकर्मक धातु होती है यति प्रयत्ने धातु, तो इसका यति प्रयत्ने धातु का भी प्रयत्न अर्थ है और वह अकर्मक होता है। ऐसे ही अगर क्री धातु का भी केवल यत्न अर्थ मानेंगे तो यति प्रयत्ने धातु की तरह क्री धातु भी जो है अकर्मक होने लगेगी। वही कह रहे हैं तथा च यति प्रयत्ने इतिवत, माने केवल यत्न रूप फल अर्थ मानने पर यति प्रयत्ने धातु की तरह फलस्थानीय यत्न वाचकत्व अविशेषात, जैसे यति प्रयत्ने में फल स्थान पर कौन है यत्न अर्थ है और उसका वाचक धातु है यति धातु, उससे अविशेषात उससे कोई विशेष अंतर नहीं रहेगा क्री धातु का, तो अकर्मकता आपत्ति ही फिर अकर्मकत्व की आपत्ति होगी। क्री धातु जो है सकर्मक है वह अकर्मक होने लगेगी। उक्त रीत्या दुर्बारा, जैसा कि हमने बताया कि व्यापार अर्थ नहीं मानने पर केवल फल अर्थ अगर माना जाएगा तो क्री धातु में अकर्मकता की आपत्ति दुर्बार होगी अर्थात उसका बारण आप नहीं कर पाएंगे। तथा च नहीं यत्नः इत्यत्र फलस्थानीयत्वेन इति शेषः, ताकि कारिका में जो कहा गया है नहीं यत्नः उसमें ये जोर देना है फलस्थानीयत्वेन यत्न, माने फल के रूप में यत्न मात्र अर्थ जो है क्री धातु का नहीं मानना चाहिए, ये इससे अर्थ निकलेगा। इसलिए कहा कि इति शेषः, माने कारिका में ये जोर देना है कि फल के रूप में फलस्थानीयत्वेन नहीं यत्न इष्यते, माने फल के रूप में यत्न मात्र अर्थ जो है नहीं चाहिए, माने मानना नहीं चाहिए। क्रिय इति धातु मात्र उपलक्षणम, क्रिय धातु जो है कारिका में वह केवल क्रिय को ही नहीं बताता है, वह धातु मात्र का उपलक्षण है। अब उपलक्षण किसे कहते हैं, जो स्व का भी बोध करावे और स्व से भिन्न का भी बोध करावे उसे उपलक्षण कहते हैं। संस्कृत में इसको कहेंगे स्वबोधकत्वे सति अन्य बोधकत्वम उपलक्षणत्वम। फिर से सुन लीजिए, स्वबोधकत्वे सति अन्य बोधकत्वम उपलक्षणत्वम, जो स्व का बोधक हो और अन्य का भी बोधक हो उसको हम उपलक्षण कहते हैं। तो यहाँ जो कारिका में क्रियों कर्मकता प्रत्यय में क्रिय धातु जो है वह स्व को भी बताता है, माने क्रिय धातु को भी बताता है और बाकी धातुओं को भी बताता है। इसलिए कहा कि क्रिय धातु जो है वह धातु मात्र का उपलक्षण है, अर्थात सर्वेशाम अपि अकर्मकता सकर्मकता वास्यात, ये केवल क्रिय धातु में ही दोष नहीं होगा फलमात्र अर्थ मानने पर, बल्कि सभी धातुओं में ये दोष होगा कि वो या तो उसमें अकर्मकता आ जाएगी या फिर सकर्मकता आ जाएगी, और जो कि विरुद्ध होगी, जबकि होना ये चाहिए कि सकर्मक में सकर्मकता हो अकर्मक में अकर्मकता हो, लेकिन फल मात्र अर्थ मानने पर सभी में या तो सकर्मकता आ जाएगी या अकर्मकता आ जाएगी, क्योंकि व्यापार अर्थ आप मानते नहीं हैं और सकर्मक अकर्मक के लक्षण में व्यापार को मान करके ही लक्षण बनाया गया है, इसलिए वो लक्षण जाएगा नहीं, तो फिर सकर्मकता अकर्मकता कुछ भी हो सकती है। अथवा एक तरह से इन्होंने ये क्यों कर्मकता पत्र नहीं यत्नोर्थ स्थिति की व्याख्या की ग्रंथकार ने, अब दूसरे टाइप से भी व्याख्या कर रहे हैं उस पंक्ति की, इसलिए कहते हैं अथवा व्यापारो भावना इति अर्धेन व्यापारस्य वाच्यत्वं प्रसाद्य, ताकि कारिका में जो पूर्वार्ध है कि व्यापारो भावना सैव उत्पादना सैव च क्रिया, ये पूर्वार्ध है, इति अर्धेन इस पूर्वार्ध से व्यापारस्य वाच्यत्वं प्रसाद, व्यापार में वाच्यत्व को सिद्ध किया, माने धातु का अर्थ व्यापार होता है, इसको सिद्ध किया। अब फलांशस्यापि तत्साधयन, और फल अंश जो है वो भी व्यापार का ही अर्थ है, उसको साधयन माने सिद्ध करते हुए नैयायिक अभ्युपगतम, नैयायिकों का जो अभ्युपगत है माने स्वीकृत सिद्धांत है, क्या कि जानाति करोति इत्यादि है केवल ज्ञान यत्न आदि क्रिया मात्र वाचित्वम, नैयायिक लोगों का मानना है कि जानाति का अर्थ केवल ज्ञान होता है, व्यापार ज्ञान होता है और वह ज्ञान व्यापार रूप होता है, माने ज्ञा धातु में फल अर्थ नहीं होता है, केवल व्यापार अर्थ होता है। ऐसे ही करोत्यादे क्री धातु का भी जो है केवल यत्न रूप व्यापार अर्थ होता है, फल अर्थ नहीं होता, ऐसे जो मानने वाले नैयायिक लोग हैं तन मतम दूषयति, उनके मत को दूषित किया जाता है उत्तरार्ध के द्वारा, क्रियो कर्मकता प्रत्यय नहीं यत्नोर्थ स्थिति के द्वारा। इस तरह से दूसरी व्याख्या की गई, जिस व्याख्या में नैयायिकों की के सिद्धांत पर चोट की गई है। नैयायिक लोग कहते हैं कि ज्ञा धातु और क्री धातु में केवल व्यापार अर्थ होता है, फल अर्थ नहीं होता, इस बात का खंडन करने के लिए ये उत्तरार्ध बताया गया है। कहते हैं कि अयम भाव, अब उसका भाव बताते हैं उत्तरार्ध का। कहते हैं कि फलांशस्य अवाच्यत्वे, कि फल का अंश जो है उसको अगर अवाच्य मानेंगे, माने ज्ञा धातु क्री धातु इन सबों में वाच्य नहीं मानेंगे, तो व्यापार एव धातु अर्थ स्या, तो क्या होगा, केवल व्यापार ही धातु का अर्थ होगा, फल तो धातु अर्थ होगा नहीं। तथा च स्वार्थ फल व्यधिकरण व्यापार वाचित्वादि रूप सकर्मकत्व उच्छेदापत्ति, तो पहले जो सकर्मकत्व का लक्षण किया गया है कि जो धात्वर्थ फल से व्यधिकरण व्यापार का वाचक हो वह सकर्मक होता है, इस व्यवस्था का उच्छेद होने लगेगा, ये व्यवस्था बिगड़ने लगेगी। न च क्रियादो सकर्मकत्व व्यवहारो भागतः इति नैयायिकोक्तम युक्तम, इस पर नैयायिक लोग एक तर्क देते हैं, कहते हैं कि बाकी जगह तो ठीक है, जहाँ पर फल और व्यापार दोनों अर्थ होते हैं वहाँ तो ये लक्षण चला ही जाएगा, स्वार्थ फल व्यधिकरण व्यापार वाचकत्व सकर्मकत्व, जहाँ ये लक्षण नहीं जाएगा जैसे क्री धातु ज्ञा धातु इन सब में केवल व्यापार ही अर्थ है, फल अर्थ नहीं है, तो यहाँ पर ये लक्षण नहीं जाएगा, तो ऐसा करेंगे लक्षणा के द्वारा जो है इसमें हम सकर्मकत्व की सिद्धि मान लेंगे, अकर्मकत्व की सिद्धि मान लेंगे। लक्षणा का तात्पर्य ये है कि व्यापार तो मानते ही है ना ज्ञा धातु में और इसमें क्री धातु में, तो वह व्यापार जो है लक्षणा के द्वारा फल अर्थ को भी बताएगा और इस तरह से उसमें सकर्मकत्व चला जाएगा। तो इस तरह से नैयायिकों ने इसको भाक्त माना। भाक्त का तात्पर्य समझिए, भक्ति शब्द से भाक्त शब्द बना है और भक्ति का एक अर्थ है लक्षणा, तो लक्षणा से होने वाला जो अर्थ का लाभ है उसको कहते हैं भाक्त। भाक्त माने लाक्षणिक, लक्षणा के द्वारा सिद्ध, ठीक है। तो नैयायिकों ने कहा कि क्रियादो सकर्मकत्व व्यवहारो भाक्त, कि क्रिय और ज्ञा धातु में सकर्मकत्व का जो व्यवहार है वह भाक्त है, माने लाक्षणिक है, लक्षणा के द्वारा सिद्ध होता है। इति नैयायिकोक्तम न युक्तम, यह जो नैयायिक की उक्ति है वह युक्त नहीं है। क्यों? कहते हैं कि व्यवहारस्य भाक्तत्वे भी, ताकि लक्षणा के द्वारा व्यवहार जब आप चला भी लेंगे फिर भी कर्मणि लकार असंभवात, फिर भी ऐसी धातुओं से क्री धातु से ज्ञा धातु से कर्म में जो लकार आता है, कर्मवाच्य में जो प्रयोग बनता है वह असंभवात, वह असंभव हो जाएगा। लक्षणा के द्वारा व्यवहार तो हो सकता है, मन यह ज्ञा धातु त्रिधातु सकर्मक है, इस तरह से हम व्यवहार कर सकते हैं, बोल सकते हैं, लेकिन उसमें हम कर्म में लकार नहीं ला सकते, यही यहाँ पर तात्पर्य है। अब इसका उदाहरण बहुत ही बढ़िया देते हैं, कहते हैं कि नहीं तीरे गंगा पदस्य भाग तत्वे अभी, ताकि गंगायाम घोषा में गंगा का जो अर्थ है वो तीर अर्थ ले लेते हैं लक्षणा के द्वारा, तो ये अर्थ ले तो लेते हैं गंगा का, गंगा तीर अर्थ ये व्यवहार में आ तो जाता है, लेकिन आप बताइए कि उस तीर अर्थ में लाक्षणिक अर्थ में कोई स्नानादि कार्य कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। तो लक्षणा के आधार पर अर्थ निकालना एक अलग बात है और किसी कार्य विशेष को करना ये अलग बात है। तो आप भी लक्षणा के द्वारा भले ही सकर्मकत्व अकर्मकत्व का व्यवहार कर लेंगे, लेकिन उसमें विशेष कार्य जो है कर्म में लकार लाना वो विशेष कार्य नहीं हो पाएगा। अब पंक्ति देखिए, नहीं तीरे गंगा पदस्य भाग तत्व अति, यानी तीर अर्थ में गंगा पद भागत रहने पर भी, यानी गंगा पद के द्वारा लक्षणा से तीर अर्थ निकलने पर भी, तेन स्नानादि कार्यम कर तुम न सक्यम, उस तीर पर जो है स्नानादि कार्य नहीं किया जा सकता है, स्नानादि कार्य तो केवल गंगा में ही हो सकता है। एवं च नहीं यत्न इत्यत्र यत्न मात्रम इत्यर्थ, इसलिए कारिका में जो ये कहा गया कि क्रियो कर्मकता प्रत्यय नहीं यत्नोर्थ इससे, उसमें नहीं यत्न अर्थ जो है उसमें मात्रम लगा दीजिए कि नहीं यत्न मात्रम अर्थ, माने यत्न मात्र अर्थ धातु का नहीं होगा, बल अर्थात केवल व्यापार अर्थ नहीं होगा, उसके साथ साथ फल अर्थ भी न्यायिकों को मानना चाहिए। इस तरह से पांचवी कारिका की व्याख्या जो है वह पूर्ण होती है। अब हम छठवीं कारिका की व्याख्या में प्रवेश करेंगे और ये छोटी ही कारिका है, मतलब इसकी व्याख्या, इसमें कहते हैं कि अतएव आह का कि दोनों अर्थ होते हैं फल व्यापार धातु के, इसीलिए कहते हैं कि किंतु उत्पादनम एव, अर्थात क्री धातु का जो है केवल यत्न अर्थ नहीं है अपितु उत्पादनम एव अर्थ, उत्पादन ही अर्थ है। उत्पादन अर्थ का मतलब है, नीचे देखिएगा लिखा है उत्पादनम उत्पत्ति रूप फल सहितम यत्नादि क्रियार्थ, माने उत्पत्ति रूप फल और यत्न रूप व्यापार, ये दोनों अर्थ जो हैं ये क्री धातु के हैं। तो उत्पादन अर्थ है का मतलब उत्पत्ति और यत्न, ये दोनों अर्थ हैं, ऐसा जो है व्याकरणों ने बताया। तो किंतु उत्पादनम एव, अर्थात यत्न मात्र अर्थ नहीं है अपितु उत्पादन अर्थ है, अर्थात उत्पत्ति रूप फल भी अर्थ है और यत्न रूप व्यापार भी अर्थ है। अब इसमें जो है फल जो है धातु का अर्थ होता है, फल में धातु का वाच्यत्व होता है, इसके लिए युक्त्यंतर कहते हैं, माने अन्य युक्ति को भी प्रदर्शित करते हैं। मैं व्याख्या को पढ़ा रहा हूँ, इसी से वो जो है कारिका भी क्लियर हो जाएगी। तो फलस्य वाच्यत्व युक्त्यंतरम आह अत इत्यादि, फल के वाच्यत्व में युक्त्यंतरम, अन्य युक्ति ही युक्त्यंतरम, अन्य जो युक्ति होती है, अलग जो युक्ति होती है उसको युक्त्यंतर कहते हैं। तो फल को वाच्य मानने में एक और युक्ति बता रहे हैं, एक पहले युक्ति बता दिए कि फल को वाच्य क्यों मानना चाहिए, कहा कि फल को वाच्य नहीं मानेंगे तो सकर्मकत्व अकर्मकत्व की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। जैसे यति प्रयत्न धातु अकर्मक होती है, उसी तरह से क्रिय धातु भी जो है वह अकर्मक होने लगेगी। इस तरह से पहले युक्ति बताई, अब दूसरी युक्ति बताते हैं फल को वाच्य मानने में, कहा क्या, तो अत इत्यादि, यतः क्रियो यत्नम यत्न मात्रम अर्थो निश्यते, क्रिय धातु का यत्न मात्र अर्थ न इष्यते, माने इतना ही अर्थ जो है इष्ट नहीं है, वांछित नहीं है, अतः इसीलिए कर्मवत स्यात इति पदेन, ये जो कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया ये जो सूत्र है, इस सूत्र से कर्मवत भाव होता है क्रिय धातु के स्थल में। ये कर्मबद्ध भाव की बात मैं पहले बता चुका हूँ कि कर्तृ कर्म वाच्य बताया था कि ओदन पच्यते स्वयमेव, उसमें लकार आता तो है कर्ता अर्थ में, लेकिन उसको कर्मबद्ध भाव हो जाने से चिन्ह यक तंग ये सब हुआ करता है। तो वही है कारिका में जो कहा कि कर्मबद्ध स्यात, कर्मवत स्यात का मतलब होता है कि कर्मवत भाव स्यात, वो कर्मवत भाव किससे होगा, तो कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया, वही कहा, अतः कर्मवत स्यात इति पदेन कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रिया इति सूत्रम लक्ष्यते। तात्पर्य ये है कि जब हम उत्पादन अर्थ मानते हैं, अर्थात फल और व्यापार दोनों अर्थ मानते हैं, तो वहाँ पर कर्मबद्ध भाव हो जाता है और क्रियते घटः स्वयमेव, इस तरह से प्रयोग बनता है कर्मकर्तृवाचि में। यदि केवल हम व्यापार अर्थ ही माने, फल अर्थ नहीं मानेंगे, तो कर्मबद्ध भाव नहीं होगा और क्रियते घटः स्वयमेव इस तरह का प्रयोग नहीं हो पाएगा। यही चीज कहते हैं अयम अर्थ है, माने यहाँ पर ये अर्थ है कर्मवत् स्यात् का, कि यत एव एव अस्य उत्पादनार्थकता, माने क्रिय धातु का उत्पादन अर्थ जो स्वीकार किया गया है, यतः माने यस्मात्, जिस तरह से, उसके कारण ही, अतः उसी कारण से, पच्यते ओदनः स्वयमेव इतिवत्, जैसे पच्यते ओदनः स्वयमेव ये कर्मकर्तृवाचि में प्रयोग होता है, उसी तरह क्रियते घटः स्वयमेव यह भी प्रयोग होता है। इसमें भी यक चिन्ह ये सब कार्य उपपद्यन्ते माने संभवन्ति, माने संभव होता है। अन्यथा यदि हम फल अर्थ नहीं मानेंगे तो यत्नस्य कर्मनिष्ठत्वाभावात्, तो फिर क्या मानेंगे, केवल यत्न रूप व्यापार अर्थ मानेंगे क्री धातु का, और फिर वह यत्न जो है वह चेतन निष्ठ धर्म है, वह तो चेतन कर्म में ही निष्ठ रहेगा, अचेतन में रहेगा नहीं। तो वही कहते हैं कि अन्यथा यत्नस्य कर्मनिष्ठत्वाभावात्, यत्न जो है वह कर्मनिष्ठ तो रहेगा नहीं अचेतन में, तो तन न स्यात्, माने कर्मबद्ध भावो न स्यात्, कर्मबद्ध भाव नहीं होगा, क्योंकि जैसे क्रियते घटः स्वयमेव में घट जो है अचेतन है, तो उस अचेतन में तो यत्न रूप व्यापार रहेगा नहीं, तो फिर जो है तन न स्यात्, माने कर्मबद्ध भाव नहीं होगा। किस तरह से, उदाहरण दिया दृश्यवत्, ताकि जैसे दृश्य धातु में कर्मबद्ध भाव नहीं होता है, दृश्यते घटः स्वयमेव इति न प्रयोग, जैसे स्वयं ही घड़ा दिखाई देता है, इस तरह से प्रयोग नहीं किया जाता है संस्कृत में, क्योंकि दर्शनस्य घट अवृत्तित्वात्, क्योंकि दर्शन जो है घट में अवृत्ति है, माने घट में दर्शन नहीं रहता है, घट में आँख नहीं होती है कि वह दर्शन कर सके, तो दर्शन जो रूपी जो कर्म है, दर्शन रूपी जो फल है, वह घट में नहीं रहने के कारण दृश्यते घटः स्वयमेव ऐसा प्रयोग नहीं होता, दृश्य धातु के प्रयोग में कर्मबद्ध भाव नहीं होता। तथा यत्नस्य अपि, ऐसी स्थिति यत्न केवल अर्थ मानने पर होगी, इति तथा प्रयोग अनापत्ते, और इस तरह से क्रियते घटः स्वयमेव इस तरह का जो प्रयोग है इसकी अनापत्ति होगी, माने इस तरह का प्रयोग नहीं हो पाएगा, और इस तरह का प्रयोग होवे इसलिए जो है दोनों फल और व्यापार ये दोनों अर्थ मानने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर छठी कारिका की व्याख्या भी पूर्ण हुई, अब हम आगे सातवीं कारिका के बारे में पढ़ेंगे।